بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو آج 12ویں مجلس ہے. بدگمانی اور تجسس اور غیبت سے، اصل تو ہے بدگمانی اور تجسس کا علاج. آگے فرما رہے حضرت والا نے فرمایا کہ بدگمانی، تجسس اور غیبت کا علاج یہ ہے کہ توازو اختیار کرو. علاج بتا رہے اس مجلس کے اندر. گزشتہ مجلس بدگمانی اور تجسس کیا ہے اس کے بارے میں بتایا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا. تو فرمایا توازو اختیار کرو، تکبر کو دل سے نکالو، اور جب تک اصلی مرض زائل نہ ہو اس وقت تک غیبت کا فوری علاج یہ کرو کہ فکر کرو، تعمل سے کام لو، سوچ کر کرو، اور کوتاہی پر جرمانہ مقرر کرو. اگر ہو جائے تو اس پر جرمانہ پنش دو، اور وسوسہ بدگمانی کے وقت توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف موڑ دو. جی، اس ملفوظ میں حضرت والا نے دو علاج تجویز فرمائے. یہ تو حضرت والا کا جملہ تھا، اس میں دو علاج بتائے. ایک علاج ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسرا علاج وقتی اور فوری ہے. پھر فوری اور وقتی علاج کی بھی تین صورتیں، اور جو فوری علاج ہے اس کے اندر بھی تین طرح کی ہے، تین صورتیں بیان فرمائیں. پہلا علاج یہ ہے کہ فکر اور تعمل سے کام لو. یعنی جب کوئی چیز بولنا ہے تو فکر، سوچو، اس کے بعد اس کو کرو. یعنی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ بات زبان سے نکالو یا نہ نکالو، اسی کو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو آپ خاموش رہتے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن آپ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جواب میں فرمایا، یعنی میں اس وقت تک خاموش رہتا ہوں جب تک میرے سامنے یہ واضح نہ ہو جائے کہ بہتری بولنے میں ہے یا خاموش رہنے میں، میں یہ سوچتا ہوں. جی جی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہتری بولنے میں ہے یا خاموش رہنے میں ہے. یہ در حقیقت اس مقولے پر عمل ہو رہا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو. تو وہ سوچتے تھے اگر بولے فائدہ کچھ نہیں ہے بولنے کا تو چھوڑ دو. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو بیٹھے ہوئے مروڑ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا، اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا. زبان کو مروڑ رہے تھے. پوچھا کہ کیوں زبان کو اس طریقے سے؟ کہا کہ زبان نے مجھے ہلاکت کے اندر ڈالا، ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر. صدیق کون ہوتا ہے؟ نبی کا آئینہ. صدیق کون ہوتا ہے؟ نبی کی کاپی. ہاں، نبی کی کاپی یوں سمجھو، آئینہ کاپی. فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. جن کو اللہ تعالی فکر عطا فرماتے ہیں وہ اس طرح زبان کا استعمال کرنے میں احتیاط اور اس کا استحضار رکھنے کی تدبیر کرتے ہیں. جی، لہذا اگر انسان زبان کو صحیح استعمال کرے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کرے تو یہ بڑی خراب چیز ہے. یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی زبان جہنم میں ڈالنے والی ہے. زبان یا تو جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں ڈال دے گی. अब वो इस्तेमाल हमारे हाथ में है। अल्लाह ने जबान दे दी है, इस जबान के जरिए से तुम जन्नत भी कमा सकते हो, जबान के जरिए से जहन्नम में भी जा सकते हो। देखो यही तो है कि जबान को सही इस्तेमाल कैसे करना, उसके लिए फिर ऐसे दर्स की जरूरत है, ऐसी सोहबत की जरूरत है, फिर ऐसे रूहानी डॉक्टर की जरूरत है कि जो हमारी जबान को भी और हमारे हर अमल को सही कर दे। अगर दिल के यकीन के साथ जबान से कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बताओ ये जबान, ये कलमा कहां से पढ़ा जाएगा? जबान से। जी अगर उसने दिल से पढ़ लिया तो काफिर जहन्नम से जन्नत में पहुंच जाएगा। तो देखो जबान से एक कलमा निकला तो एक जहन्नम में जाने वाला काफिर जन्नत में चला जाएगा। और अगर किसी मुसलमान ने इस जबान से कुफ्र के बोल दिया, कुफ्र बोल दिया, तो मुसलमान सीधा जहन्नम में पहुंच जाएगा। तो हदीस शरीफ में है कि लोग अपनी जबान के करतूत की वजह से जहन्नम के अंदर ऊंधे मुंह डाले जाएंगे। इस जबान का बेमहाबा इस्तेमाल, बगैर जरूरत का इस्तेमाल, कि जो मुंह में आया बक दिया, जो समझ में आया कह गुजरे, उसको छोड़ो और बोलने से पहले सोचने की आदत डालो कि जबान से जो कलमा निकाल रहा हूं ये कहीं मुझे हलाकत में तो नहीं डाल देगा। जी मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आया करते थे, वो बहुत बोलते थे, होते हैं बहुत सारे मुतकल्लिम होते हैं, वो बहुत बोलते थे, आते ही बोलना शुरू कर देते थे और फिर कोई इंतहा नहीं होती थी, फिर उसका एंड नहीं, पता नहीं उनकी बातें मेरे बहुत इतना बोलते हैं, एक घंटे तक हम सोचते हैं कि चलो ये खामोश रहे तो मैं कुछ बोलू, अरे वो खामोश रहने का नाम पता नहीं, ऐसे लगता है ऊपर से कोई वही आ रही हो, इतना बोलते हैं बहुत से। तो अब ये भी एक साहब थे जो फरमाया मुफ्ती शफी साहब के पास आते थे और फरमाया बहुत बोलते थे, फिर कोई इंतहा नहीं होती थी, वाली साहब बर्दाश्त करते थे। और चंद रोज के बाद उन साहब ने कहा हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूं, ये तो दोस्ती थी, कि उनकी समझ में आया कि लाओ हजरत से बैत हो जाओ, तो आपसे बैत होना चाहता हूं और इस्लाही ताल्लुक कायम करना चाहता हूं। तो हजरत वाली साहब ने उनसे फरमाया कि अगर तुम इस्लाही ताल्लुक कायम करना चाहते हो तो पहला काम यह करो कि जबान पर ताला लगाओ। अब उनको कोई जिक्र नहीं दिया, देखो उनको कोई जिक्र नहीं दिया, कोई मुराकबा नहीं दिया, बोले तुम अगर बैत होना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक ही जिक्र, क्या? जबान पर ताला लगाओ और ये जबान जो कैंची की तरह चल रही है ना उसको रोको, बस यही तुम्हारा वजीफा और यही इलाज है। अब बताओ, अभी हमारी अकल तो कहती है कौन सा सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं उसको दिया, न कलमा पढ़ने का बोला न कुछ बोला, बस तुम खामोश रहो, बस जबान को मत चला, फरमा यही तुम्हारा वजीफा और यही इलाज। चुनाचे उसके बाद जब वो मजलिस में आते तो खामोश बैठे रहते और उसी इलाज के जरिए उनकी इस्लाह हो गई। अल्लाह, देखो कोई बड़े बड़े जिक्र नहीं दिए, बस ये खामोशी उनके इलाज बन गया और वो सारे दर्जा तय कर चुके खामोशी में। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से जितनी औरतें हैं, मां बहने हैं, अगर वो खामोश इख्तियार कर लेना तो उनके भी सारे दर्जात तय हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा बोलने को चाहिए मर्दों के मुकाबले में, तो उनको दर्जात बहुत आसानी से तय हो सकते हैं, इसलिए कि उनका इलाज कुछ ज्यादा वजीफे में नहीं है, उनका इलाज ज्यादा खामोश रहने में, बस इसलिए मुराकबा अक्सर औरतों से नहीं होता है। हाँ, उनको पढ़ने को दो तो बोले, क्योंकि जबान की चीज है ना, जबान से बोलने वाली कोई चीज दो, बाकी जबान को खामोश करने वाली चीज बोले ये हमसे नहीं होगा। जी इसलिए वो हमेशा मुराकबा उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। हाँ, उनको बोलो 100 मरतबा कलमा पढ़ना है, कुरान शरीफ के 2-4 पारे पढ़ने हैं और फरमाया यहां पर ये बात करनी वहां पर, तो बोले हाँ वो तैयार, ये जिक्र बहुत अच्छा, बोले खामोश ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो उनको मुराकबा दिया, इसलिए मुराकबे में अक्सर औरतें फेल है, उनसे होता है इल्ला माशाल्लाह, बाद चल पड़ते हैं। तो उनका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है खामोशी में। अच्छा, इसलिए बोलने में फिक्र और तामुल से काम लो कि मैं जो बोल रहा हूं ये गिबत है या झूठ है, या जायज है या नाजायज है, या हराम है या हलाल है, उसको पहले सोचो। आज मार्केट में कुछ लेने जाते हैं ना, थोड़े बहुत जिनके अंदर दीन है, तो वो कहते हैं यार ये हलाल है या हराम है। तो वहां खाने पीने की चीज के अंदर बिस्किट और चॉकलेट में तो हराम और हलाल देख रहे होते हैं, ऐसे ही बोलने में भी देखो ये हलाल बोल रही है ये हराम, ये जायज है या नाजायज है, ये झूठ है असली। लेकिन वहां तो सोचते ना और यहां पर सब सोचते, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन ऐसी ही आदत वहां पर भी डालना कि जिस तरीके से चीजें खरीदने से पहले उसको देखते, इसका इंग्रेडिएंट वगैरह के भाई हलाल है या हराम है, ऐसे ही बोलने से पहले भी उसका इंग्रेडिएंट देख लो कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, कम से कम अल्फाज निकालो। अल्लाह, उसको पहले सोचो। और अगर तामुल और गौर व फिक्र करने के बावजूद और तौबा इस्तिगफार करने के बावजूद फिर भी कोताही हो जाए और गीबत सरजद हो जाए, तो फिर अपने ऊपर जुर्माना मुकरर करो कि आइंदा जब कभी गीबत होगी तो इतने पैसे अदा करूंगा, लेकिन पैसे इतने होने चाहिए जिनको निकालने में थोड़ी सी तकलीफ हो, इतना कम ना हो जैसे अलीगढ़ कॉलेज में था। अलीगढ़ कॉलेज का किस्सा पहले भी आ चुका है, फिर से सुन लो। अलीगढ़ कॉलेज में तमाम तलबा को, हिंदुस्तान में एक इलाका है अलीगढ़, वहां पर एक कॉलेज जिसका नाम ही अलीगढ़ कॉलेज है, तमाम तलबा को मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी था। अगर कोई हाजिर न होता तो फी नमाज 4 आने जुर्माना अदा करना जरूरी होता, 4 आने उस जमाने के, यानी उस जमाने के वो 4 आने या 4 पैसे समझो, पैसे सेंट। चुनाचे जो तलबा बड़े बड़े रईसों के बेटे होते ना, वो महीने के शुरू में ही पूरे महीने का जुर्माना जमा करा देते। लिहाजा जुर्माना ऐसा होना चाहिए जिसके अदा करने में थोड़ी सी मशक्कत भी हो, समझे। और या ये जुर्माना मुकर्रर करो कि जब कभी गिबत होगी तो 4 रकात नफल पढ़ूंगा, उसके नतीजे में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाते जी। इस किस्म की कोई चीज मुकरर करो फिर भी ना माने, तो फिर तो जरूरी है कि कोई रहबर पकड़ो, कोई गाइड पकड़ो, कोई रूहानी डॉक्टर पकड़ो और उसकी निगरानी में सब कुछ करो, वो जैसा कहे वैसा करो, तो इंशाअल्लाह इलाज हो जाएगा। एक इलाज ये भी है कि जब कभी दूसरे की तरफ से बदगुमानी का ख्याल आए तो अपनी तवज्जो को जिक्रुल्लाह की तरफ बदल दो। बदगुमानी का ख्याल आए तो अपनी तवज्जो को जिक्रुल्लाह की तरफ बदल दो, मुराकबे में चले जाओ, अपनी सोच को अपने दिल की तरफ ले आओ। मसलन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, या कलमा पढ़ना शुरू कर दो, या कोई तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो, या कुरान की तिलावत, या मुराकबा, और अपनी तवज्जो इस तरफ से फेर लो। ये तो वक्ती इलाज था, ये सारा क्या है वक्ती, ये परमानेंट इलाज नहीं है। वक्ती थोड़ा 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 करते करते कभी इंसान कामयाब हो जाता है इसमें, कभी होगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा, ये सब होगा। ये तो वक्ती इलाज था। मुस्तकिल इलाज ये है कि अपने अंदर तवाजु पैदा करो। मुस्तकिल इलाज क्या है? अपने अंदर तवाजु पैदा करो जी, क्योंकि जैसा कि पहले अर्ज किया था कि सारी बीमारियां तकब्बुर के होने से और तवाजु के न होने से पैदा होती है जी। तवाजु, तवाजु इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज लिखे तो फरमाया ये दिल में अपनी बड़ाई है कि जो मैं सोचता हूं और समझता हूं वो दुरुस्त है। अच्छा, ह्यूमिलिटी यानी बर्दाश्त, जी, दिल में बड़ाई है कि जो मैं सोचता हूं और समझता हूं वो दुरुस्त है। मैं बड़ा अकलमंद हूं, मैं बड़ा आलिम हूं, मैं बड़ा पासा हूं, ये सब तकब्बुर के ख्यालात है जो इंसान के अंदर गीबत, बदगुमानी, तजस्सुस का दाइया पैदा करते हैं। इन सब का इलाज ये है कि अपने अंदर तवाजु पैदा करो। इन सब का इलाज अपने अंदर तवाजु पैदा करो। अब तवाजु कैसे पैदा हो? उसका तरीका ये है कि किसी शेख का दामन पकड़ लो, किसी शेख का दामन पकड़ लो, यानी उनके हाथ पर बैत हो जाओ, क्योंकि शेख के सामने रगड़े खाए बगैर काम नहीं बनता। शेख के सामने रगड़े खाए बगैर काम नहीं बनता, उसकी चपत खाओ। चपत खाओ यानी डांट खाओ, मार खाओ, या उनकी कड़वी बातें सुनो, नफ्स के खिलाफ बातें सुनो, यह है उसको कहते चपत खाओ। उसकी डांट खाओ, उसके साथ लगे लिपटे रहो, उसकी निगाहों को बर्दाश्त करो और उसके खिलाफ तबा उम्र को बर्दाश्त करो। जो अपनी तबीयत के खिलाफ जो बात है उसको बर्दाश्त करो, तो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता तवाजु पैदा हो जाएगी। देखो, और आज देखो, औरतों के लिए तो पहला शेख शौहर है, याद रखना। हाँ, क्यों? औरतों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बहुत आसान कर दी। क्यों? अपने शौहर की बात मान ले, उनकी कड़वी कसेली सुन ले और उनको अपना शेख माने। और वो शेख कैसे है कि उसको शरीयत ने बनाया। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाजें पढ़े, फराइज और वाजिबात और सुन्नतों का एहतमाम करे, अपने शोहर को राजी रखे और शोहर की इताअत करे, फरमाए वो औरत जन्नत में। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुनाह है कि जो शोहर से नहीं हो पाते, यानी उसके जरिए से हमारे नहीं छूट रहे, तो फिर उसके लिए उन्हीं की इजाजत से, उनकी निगरानी में उनको राजी करके किसी शेख को पकड़े और फिर उनके वास्ते से, ताकि उसमें शोहर को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, औरतों को भी फायदा हो जाए। तो ऐसी चीजों में जो खास करके कोई गुना हमें खा रहा है, जैसे गिबत है या आमतौर पर बीमारियां है, और इस तरीके से तजस्सुस है और यह बदगुमानी है, अब इसको निकालने के लिए फिर उनसे ताल्लुक रखने के बाद, शोहर के वास्ते से ताल्लुक रखे, अगर शोहर दीनदार नहीं है तो उसको दीनदार बनाने की कोशिश करे, कभी अल्लाह से मांगे तो सही। इस वक्त तो लड़ाई या लड़ाई चल रही है, बदगुमानियां चल रही है मियाँ के दरमियान, बीवी के दरमियान में, और आपस में झगड़ रहे। हाँ, तो दोनों किसी रूहानी डॉक्टर से दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएगी और अल्लाह ताला दोनों से काम भी लेगा और जन्नत का रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखे, याद रखे, औरतों के लिए तो बहुत आसान रास्ता है, लेकिन आजकल औरतों ने अपनी जन्नत को महंगी कर दिया और जहन्नम को सस्ती कर दिया। क्यों? कि वो अक्सर अक्सर हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में देखा। क्यों? कि फरमाए वो नाशुक्री करती है, नाफरमानी करती है। तो देखो किसकी? अपने शोहरों की। तो उसकी वजह से, इसलिए अगर वो थोड़ा सा इतना बर्दाश्त कर ले, तो फरमाया देखो ये बीमारियां दूर करनी है तो उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, निगाहों के सामने होना पड़ेगा। अभी आज हमारे लिए उनकी उनकी डांट, याद रखो, हमारे लिए बहुत बहुत मुफीद होती है। अब बहुत सारे इसमें सवालात है और हो सकता है मेरी बात आप लोगों को अच्छी भी नहीं लग रही होंगी, क्या क्या तुम तो हमारे शोहरों के सामने ही बातें कर रहे हो लेकिन कोई बात नहीं, वो शोहरों की भी नसीहत आएगी, लेकिन अभी ये बात पॉइंट आ गया है तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला जबान खोल रहे, तो मैं बता रहा हूं कि देखो अब उसमें ये बदगुमानी ना करो, वो तो ऐसे है वैसे है तैसे है। भाई, उनका मामला वो अल्लाह के हाथ में, हमें तो उनको राजी करके जन्नत लेना है, ये तो हमारे नबी ने बता दिया बस। और अगर वो नेक है या कैसे है, उनसे कोई गुना हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, वो अल्लाह ही जाने। हमें तो जो काम दिया है वो हम करें, हमारा नफ्स क्या कहता है? अरे देखो वो तो गुनहगार है, वो हमको क्या सुधारेंगे? इसलिए कहा वो गुना जो गिबत के वो है वो नहीं सुधारेंगे, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, वो दूसरे कामों में उनकी इताअत और उनकी रजा में मिल जाएगा। 5 वक्त की नमाज में तो कोई रोकता नहीं है, रोजा और जकात और हज में तो कोई रोकता नहीं है, और उसके साथ में इताअत करो तो आगे निकल जाएंगे। फिर गुनाहों से बचने के लिए जब उनका जहन होगा तो फिर गुनाहों से बचना दोनों को आसान होगा, फिर वो भी बचेंगे और हम भी बचेंगे, क्योंकि उनको हम बचाना चाहते हैं हम नहीं कर सकते, उनकी इसलाह हम नहीं कर सकते, पहले हम अपनी इसलाह उनके जरिए से करा ले, फिर दोनों मिलकर किसी शेख से अपनी इसलाह करा। तो खैर माफ करना अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन बात आई थी अमानतन कह दिया, हो सकता है किसी को अच्छी लगे। तो जब तक फरमाया तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तवाजु पैदा हो जाएगी, और जब तक शेख न मिले या शेख से ताल्लुक कायम न हो उस वक्त तक कम अज कम इतना करो कि अपनी हकीकत को सोचा करो। किसी को शेख न मिले तो फरमाया अपनी हकीकत को सोचा करो कि मेरी हकीकत क्या है, इंसान अपने आप को देखे ना कि मैं कौन हूं। हकीकत क्या है, मेरी जात में कोई कमाल है, जो कुछ मेरे अंदर है वो अल्लाह ताला की अता है। अपने कमाल को देखे कि मेरे अंदर कमाल है, कोई नहीं है, और जो कुछ भी है तो वो तो अल्लाह ताला ने दी हुई, अपनी तो कुछ नहीं। अगर सेहत है तो भी अल्लाह की, यानी क्या सोचना, ये देखो बता रहे कि अगर हमें हमारे अंदर अगर तकब्बुर बढ़ाई बढ़ रही है किस वजह से, कि मेरे अंदर डिग्री है, तो फिर क्या पूछने का कि भाई ये तो मेरी क्या है, तो अल्लाह ने दी है, और मेरी सेहत है तो ये तो अल्लाह ने दी है, अगर मेरे अंदर हुस्न और खूबसूरती है तो ये तो अल्लाह ने दी है, मेरा अपना तो कुछ नहीं है, तो वो भी अल्लाह ताला की अता है। अगर इल्म है तो मेरे पास है तो वो भी अल्लाह ताला की अता है, और अगर पैसा है मालदार हो तो वो भी अल्लाह की अता है। तो अब अपने आप को ये देखिए, तो वो भी अल्लाह ताला कहता है। तो सब चीज अपने अंदर जितनी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बढ़ाई लाती है, पैसा है, खूबसूरत है, इल्म है, सेहत है, ये सारी बढ़ाई लाती है। तो क्या सोचो, जब तक शेख न मिले तो अपने आप को ये सोचो कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा अपना कमाया हुआ नहीं है, बल्कि तो अल्लाह का दिया हुआ है। यहां तक कि अपना वजूद, मैं दुनिया में आया भी हूं तो मेरा कमाल नहीं, अल्लाह मुझे लाए है, तो मैं कौन हूं जो मैं बड़ा बनूं। तो वो भी अल्लाह ताला कहता है, और वो भी जब चाहे उनको वापस ले ले, और जब चाहे चीज अल्लाह ले सकता है, यहां तक कि मुझे भी अल्लाह जब चाहेगा ले लेगा, क्योंकि अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह बुला लेगा। एक आदमी बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त है, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहे उसकी सेहत को वापस ले लेते, तो उसके जरिए से भी तवाजु पैदा होगी। याद रखो ये, सोचो ये भी वक्ती इलाज है, इसके जरिए से भी तवाजु पैदा होगी, ये बहुत अच्छा इलाज है। तो अल्लाह तन्हाई में बैठकर सोचे, कभी गुस्सा आ गया तो कहो कि क्या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे अंदर क्या है, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया वो तो सब मौजूद है, उसमें से तो कोई कमी नहीं हुई, फिर गुस्सा किस बात का। जी एक साहब की कुव्वत और कमजोरी, मेरे एक अजीज थे जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको ऐसी कुव्वत दी थी, ऐसी ताकत दी थी कि बर्फ की सील को एक मुक्का मारकर तोड़ देती, बर्फ आइस जो है ना उसकी सील बड़ी होती है, एक पत्थर की तरह होती है, 2 बाई 3 फीट की एक सील होती है, उसको सील कहते हैं, बड़ा पत्थर जो फैक्ट्री के अंदर जो जमाते हैं वो छोटे छोटे नहीं तो बड़ा होता था, तो फरमाया उसको एक मुक्का मारकर तोड़ देते थे। तरबूज को कभी छुरी से नहीं काटते थे, बस हाथ मारा और तोड़ दिया, हाथ मारा और तोड़ दिया। आखिर उम्र में जब बीमार हुए तो मैं उनकी आयादत के लिए गया, जी देखा कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं और हाथ ऊपर उठाने की ताकत भी नहीं थी, कि हाथ में कितनी ताकत थी कि आइस के ब्लॉक को तोड़ देते थे, और आज हाथ उठाने की भी ताकत नहीं। जब मुझे देखा और मुलाकात हुई तो मैंने दिल में कहा कि वही हामिद उनका नाम था, कि ये वही शख्स है जो बर्फ की सिल अपने हाथ से तोड़ दिया करता था, और अब ये हालत है कि हाथ खुद से नहीं उठा सकता, लिहाजा इंसान किस बात पर नाज और फखर करता है, ये चीज नहीं निकलती। अरे बहुत सारे तो बेचारे बूढ़े हो गए और बुढ़ापे के अंदर भी अभी तक इतना तकब्बुर है कि नीचा बनने को तैयार, हाथ भी हिल रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है और फिर भी तकब्बुर के बोल बोल रहे। ये तो मैंने अपने बहुत सो को देखा, मुझे इतना अफसोस होता है, मैंने अभी तक आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं की कि मरना है। और बात ऐसे अकड़ कर करते हैं, हालांकि अब बीमारी आ गई है, उम्र हो गई है, अब तो आखिरत की तरफ जाए, थोड़ा तो नरम होना चाहिए। जी मौलवी को इल्म का बहुत नाज होता है, और देखो उलमा को, उनको इल्म का बहुत नाज होता है कि मैं बड़ा आलिम हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे उस इल्म को सल्ब फरमा लेते हैं। अल्लाह ने इल्म दिया है और अल्लाह जब चाहे उस इल्म को ले भी लेता है। इंसान का अपना कुछ नहीं, कहा जिसे सेहत देता है सेहत लेता है, माल देता है माल लेता है, इल्म देता है इल्म लेता भी। चुनांचे बाद औकात अल्लाह ताला दिखा देते हैं कि कागज कलम लेकर लिखने बैठे तो अब समझ में नहीं आता कि क्या लिखे, जबकि हमें अपने लिखने पर नाज था कि हम तो राइटर है, हम बड़े अच्छे अहले कलम है, यानी राइटर है। बाद औकात अपने नाम के हिज्जे नहीं आते, यानी नाम लिखना भी नहीं आता, भूल जाते, हम बड़े अच्छे अहले कलम है, किस तरह अपना नाम लिखे भी भूल गए। लिहाजा इंसान किस चीज पर नाज करता है, किस चीज पर अकड़, किस चीज पर भरोसा करे, जो कुछ हासिल है वो सब उनकी अता है, वो अल्लाह की अता है, वो जब चाहे हमसे ले ले। जिस दिन ये बात दिल में बैठ गई और अपनी बड़ाई का एहसास दिल से निकल गया कि मैं तो कुछ नहीं हूं, जर्रा नाचीज हूं, बेमकदार हूं, हेच दर हेच हूं, बस उस दिन इंशाल्लाह तवाजु पैदा हो जाएगी। तो बोलो अपने दिल में कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम बिगाड़ने वाले हैं और हम तो गंदे हैं, गंदगी लेकर घूमते हैं, अपने दिल में ऐसे बोलो। तो ये फरमाया कि देखो जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है तो हम किस बात पर फखर करें, बताओ, हमारा तो कुछ है नहीं, और दूसरे का दिया हुआ माल है और हम उस पर फखर करते हैं, तो क्या हुआ? ये तो ऐसा ही हुआ कि एक गरीब आदमी है और एक मालदार आदमी है, और वो मालदार आदमी ने अपना माल इसको जरा संभालने के लिए दिया, भाई जरा तुम संभालना, और ये आदमी बड़ा फखर करने लगा, अरे बोले मैं तो अब सबको कहता फिर रहा है, मैं ऐसा मैं तैसा। अब बताओ ये तो पागल ही कहेगा कोई कि भाई इसने तो तुझे संभालने के लिए, तेरा तो है नहीं, वो जब आएगा तो तुझसे ले लेगा, जब वो आएगा तो तुझसे ले लेने वाला, तो तू फखर क्यों करता है इतना कि ओहो मैं हूं, तो वो जब आएगा तो जब ले लेगा तो उसका कुछ नहीं, तो वो आदमी सोचेगा भाई मेरा है ही नहीं, ये तो दूसरे का है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी नेमतें दी है वो अल्लाह ताला की दी हुई है, और हम उस पर फखर करते हैं कि मैंने तो ये इल्म हासिल किया और मेरे पास तो इतना खूबसूरती है और मैं ऐसा बोलता हूं और मैं ऐसा करता हूं, हालांकि अल्लाह ताला देख रहा है कि मेरे बंदे मैंने तुझे अमानतन दिया है, मैं जब चाहूंगा ले लूंगा, तू फखर क्यों करता है? तो ऐसा ही है, तो आज हम ऐसे ही बन गए कि अल्लाह की दी हुई चीज है, उसने अमानतन दी है, हमारी अपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो जब चाहेगा ले लेगा, उसको हक है। अब जब वो लेता है तो हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, अरे कहाँ गया हमारा, अरे भाई क्यों रोते हो, उसका दिया हुआ था उसी ने ले लिया है, उसमें कमाल, उसमें क्यों किसी पर शक करते हो कि किसने मेरे साथ में बदगुमानी की और किसने मेरे साथ में ये ऐसा किया, किसी ने नहीं किया, अल्लाह ने किया। जी तो अपना तो था नहीं। फिर अभी एक और बात जो आगे फरमाई थी, एक तजस्सुस और एक तहस्सुस, दो बातें थी। तो आगे फरमाया देखो आड़ में बैठकर बातें सुनना है ना, बहुत सारे लोग चुपके चुपके हमारी बातें सुनते हैं। आड़ में बैठकर किसी की बातें सुनना भी तजस्सुस में दाखिल है। जिसको आड़ में बैठना है तो जबान से कह देना चाहिए कि मैं बैठा हूं, या उसके सामने बैठना चाहिए, गरज किसी तरह अपने बैठने की इत्तिला कर दे। ऐसे सोए हुए हो तो भी इत्तिला कर दे, भाई देखो मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। ऐसे कहीं बैठे हम दूर और दोनों बातें कर रहे, उनकी आवाज आ रही है, तो उनको कहना चाहिए, भाई देखो आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, तो अगर कोई बात करना चाहो तो फिर दूर जाकर करो, तो कह देना। और हम क्या कहते हैं, अरे आने दो आने दो, सारी बातें उनसे राज ले लेते हैं और दूसरों को जाकर कह देते हैं। ये भी तजस्सुस है, याद रखना। अब ये हजरत वाला का इरशाद है, सुनो। मसलन दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, अब आपने आड़ में जाकर उनकी बातें सुनना शुरू कर दी, ये गुना और हराम है और तजस्सुस के अंदर दाखिल है। लिहाजा जो शख्स आड़ में बैठा हो वो बातें करने वालों को बता दे कि मैं यहाँ पर्दे में बैठा हूं, ताकि अगर वो राज की बातें करना चाहते हैं तो न करे, या उनके सामने आकर बैठ जाए। जी, आज हमारे माशरे में सब काम उल्टे हो रहे हैं, हमारे माशरे में सब काम उल्टे हो रहे हैं। जी, ऐसे मौका पर लोग ये चाहते हैं कि अपने आप को छुपा ले, ऐसे मौका पर लोग ये चाहते हैं कि अपने आप को छुपा ले और बातें करने वालों पर जाहिर न करे कि मैं यहां पर मौजूद हूं। लोग तो यही चाहते हैं ना, और खुसूसन जिससे हमारी दुश्मनी हो तो फिर और ज्यादा चाहेंगे, अरे यार क्या बात कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। यहां पर मौजूद हो और आराम से बैठकर उनकी बातें सुनो। याद रखिए, सब तजस्सुस में दाखिल है और हराम है, नाजायज है। दयानत का तकाज़ा ये था कि तुम अपने वजूद को उन पर जाहिर कर देते, ताकि वो लोग सोच समझकर बातें करते। हमारी माँ, हमारी शरीयत ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई है कि अगर वाकईतन हम लोग उस पर अमल कर ले तो आपस में कोई झगड़ा पैदा ही न हो और माशरे में कोई फसाद ही न हो। जहां कहीं फितना और फसाद और झगड़ा होता है, वो शरीयत की किसी न किसी तालीम को छोड़ने के नतीजे में होता है। शरीयत ने फितना और फसाद और झगड़े के रास्ते पर ऐसे पहरे बिठाए कि अगर हम उन पर अमल कर ले तो फिर कोई झगड़ा ही ना हो। याद रखे, शरीयत ने ऐसी शरीयत बताई है कि अगर हम उस पर अमल करें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, बार बार जुमला होता है, लोग आकर कहते हैं कि भाई दो दीनदार झगड़ पड़े, तो मैं कहता हूं दीन झगड़ा सिखाता है, दीन झगड़ा मिटाता है। बोले दो तबलीग वाले झगड़ने लगे, तो यही सवाल होता है कि तबलीग झगड़े मिटाती है, झगड़े सिखाती है, और झगड़े मिटाती है, फिर ये तबलीग वाले कैसे झगड़ रहे हैं? फिर ये तबलीग वाले कैसे झगड़ रहे हैं? उसका मतलब ये तबलीग नहीं है, तबलीग की शक्ल है। असल तबलीग होती, असल दीन होता तो कभी न झगड़ते। देखो हजरत वही फरमाते हैं कि अगर इंसान कहीं भी झगड़ता है तो जरूर कहीं ना कहीं शरीयत के अमल को वो छोड़ता है, वरना शरीयत पर अमल करे और झगड़ा हो तो कभी नहीं हो सकता। तो देखो, या तो तजस्सुस करते हैं तो बातें हमने ले ली, फिर बाद में हमें गुस्सा आएगा और हमारा झगड़ा शुरू होगा, या गिबत के नतीजे में, तजस्सुस के नतीजे में, तकब्बुर के नतीजे में, गुस्से के नतीजे में, तो ये सारी बड़ाई के नतीजे में ये सारे झगड़े शुरू। और अगर शरीयत पर अमल करो तो कोई झगड़ा ही नहीं। अरे औस और खजरत से बड़ा झगड़ा कहाँ होगा कि जिनका बरसों से चल रहा था हुजूर के जमाने में, और वो बड़े झगड़ने वाले जो नसीहतें करते थे अपने औलाद को कि तुम इसका बदला लेना, और वो आपस में मिल गए हैं। किस वजह से? इसी दीन की वजह से मिले हैं, और आज यही दीन हमारे पास है और हम झगड़ रहे हैं उनकी तरह। तब बताओ, ये दिन जब आया तो बड़े बड़े झगड़ने वाले मिल गए थे, उनके झगड़े खत्म हो गए, और ये दिन हमारी जिंदगी में आया तो हम झगड़ना शुरू कर दिया, तो अब ये दिन है कि कुछ और है? इसलिए अब इसका टेस्ट कराना चाहिए कि कौन सा दिन हमारे अंदर आ गया कि हमें झगड़ा सिखा रहा है। हाँ, तो अभी ये शेख रूहानी डॉक्टर बताएगा कि अरे तुम जिसको दीन समझ रहे हो वो दीन तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तो खाली बातें हैं, खाली शक्ल है, दीन है ही नहीं। दीन अगर होता तो तुम झगड़ते कैसे? इसलिए याद रखो, आज भी यकीन के साथ है कि जिसके अंदर सही दीन होगा वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, और जहां दीन नहीं होगा तो वहां झगड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, तो आज जितना झगड़ा है ना, ये दीन की वजह से नहीं है, बेदीनी है। इसलिए उसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। यही सोचो कि भाई अब क्या करना, मतलब कि उससे बचो, कि इसके पास दीन है ही नहीं, ये झगड़ रहा है, इसके पास दीन नहीं है, तो दीन वाला पकड़ो, जो झगड़े को मिटा रहा है, फरमाइए ये दीन वाला है। हाँ, जाहिर नहीं दिखा जाएगा कि जाहिर में क्या है, चाहे उसका लिबास लिबास शरीफाना हो, उसका चेहरा शरीफाना हो, लेकिन दीन हकीकत में अंदर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के दीन को देखते हैं, उसके दिल में क्या है, दिल में क्या है। इंसान जाहिर को देखते हैं, अल्लाह दिल को देखते हैं, और दिल को देखने के बाद फैसला करते हैं। ये सारी दिल की बीमारियां है, याद रखना, गिबत दिल की बीमारी, तजस्सुस दिल की बीमारी, तकब्बुर दिल की बीमारी, बदगुमानी दिल की बीमारी से शुरू होती है। तो ये फरमाया कि शरीयत ने, वो शरीयत की किसी न किसी तालीम को छोड़ेगा। फरमाया जहां कहीं भी फितना और फसाद और झगड़ा होता है तो सोच लो वो शरीयत की किसी न किसी तालीम को छोड़ने के नतीजे में होता है। शरीयत ने फितना और फसाद और झगड़े के रास्ते पर ऐसे पहरे बिठाए, ऐसे अस्करी बिठाए कि अगर हम उन पर अमल कर ले तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं हो। चुनांचे एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में हुक्म दिया, यानी अगर महफिल में 3 आदमी हैं तो उनमें से 2 आदमियों को ये नहीं करना चाहिए कि आपस में अलाहिदा होकर इस तरह बातें करने लगे कि तीसरा आदमी अकेला रह जाए। देखो कितनी, कि 3 बैठे हैं तो 2 अलग बैठकर बातें न करे कि एक को अलग कर दो, बल्कि तीनों मिलकर जब तक उसको एक दूसरा न मिले तो फिर ये 2 और वो 2 अलग हो जाए। लेकिन ये अकेला बैठ गया तो हो सकता है उसको बदगुमानी होगी कि ये दोनों बैठकर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसको तकलीफ होगी ना। तो 2 आदमियों को ये नहीं करना चाहिए कि आपस में अलाहिदा होकर इस तरह बातें करने लगे कि तीसरा आदमी अकेला रह जाए, ऐसा करना जायज नहीं। क्यों? इसलिए कि तीसरे को एहसास और ख्याल होगा कि उन्होंने मुझे अकेला कर दिया और मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। जी और मुझसे वो बात छुपाना चाहते हैं, इससे उसकी दिल शिकनी होगी, इसलिए 2 आदमी अलाहिदा होकर सरगोशी न करे। उसे को तकलीफ होगी। और दूसरी तरफ ये हुक्म दिया कि अगर पहले से 2 आदमी सरगोशी कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे पहले से, तीन बैठे हो तो 2 अलग ना हो, और 2 पहले से बैठकर बातें कर रहे हैं, तो तीसरे को चाहिए कि वो वहां न जाए इजाजत के बगैर, ताकि उनकी बातों में खलल वाके ना। उनको अपनी बातें करने दो, तुम बीच में जाकर क्यों घुसते हो? ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी, लेकिन हमने बस चंद चीजों का नाम दीन रख लिया, हमने बस चंद चीजों का नाम, हमने बस चंद चीजों का नाम दीन रख दिया। नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, बस किस्सा खत्म, हमसे बड़ा कोई दीनदार नहीं। हाँ, किस्सा खत्म। और बहुत से लोग कुछ ज्यादा होते तो अगर 4 महीने लगा दिए तो बोले फिर तो हम तो दीन के ठेकेदार बन गए। हाँ, और कोई हर साल लगाता है, और कोई शुरा में आ गया तो फिर कहता है कि ओहो मैं तो अभी अमीर बन गया हूं। अरे ये नहीं देखा जाता, तुम्हारे दिल कितने पाक हुए ये देखा जाएगा। किस्सा खत्म, दीन को उसी में मुनहसर समझ लिया। जिंदगी गुजारने के जो आदाब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, उनको कतई तौर पर दीन से खारिज ही कर दिया। हालांकि ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जी अकबर, बस यहां पर ही बात रहने दो। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत तो स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो जितनी बातें सुन रहे हैं उसके रोजाना का रिपोर्ट मैसेज आपके आपा को कर लिया करो कि हमें आज के सबक में ये फायदा हुआ और उस दिन के सबक में ये फायदा हुआ। ये जरा रोजाना कुछ न कुछ उनको लिख दिया करे या मैसेज दे तो जरा अच्छा रहेगा, और इसके करने से आपको बहुत फायदा होगा। वो चीज जो हमने कि दूसरे को दावत में कह दी, जबान से निकाला है, तो समझो वो अपनी जिंदगी में उतरेगा। अगर नहीं कहोगे तो कुछ फायदा नहीं। एक दो तो है जो बराबर बताते रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग बहुत खामोश हैं, इसलिए बताते जाए, इसको कहते हैं कारगुजारी, इत्तिला भी है, तो उससे बहुत नफा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। मर्द मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं और औरतें हैं आपा को बता रहे हैं।